कोई बेटा नहीं आपको चाहिए।
ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंकुंदार्यो जैन धर्मोष्ट मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं। नमः समय सारा यशवान मूर्तिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान करचिते एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सभी संयोग लखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन दान लक्षण जीव छे बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुक्ति बाह्य छे। वो एक सिद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मई करे कहीं अन्य मारू जरी परमाणु मात्र नहीं रे ये जाण तो अरंत ने गुण द्रव्य ने पर यही पड़े ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे नथी अप्रमत के प्रमत नथी ये एक ना एक भाव छे ए रीत सुध कथाए ने जे ज्ञात ते तो देत छे जम नेत्र तेम ज्ञान नथी कारक नथी करे जाने जी कर्मो दई ने जरा बंद तेम मोक्ष ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वसित ने वंदी कहूं सुत केवड़ी कथित आसमय प्राप्त हो तुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे या अनुभव ते हने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिवाय। ये शिविर का आखिरी दिन है आज और ये आखिरी स्वाध्याय है अपना। अपनी चर्चा जो 320वीं गाथा पे चलती है और सवेरे जो अपना विषय चला था वो कारण सुख पर्याय का विषय सवेरे अपन ने तीसरी गाथा से दसवीं गाथा तक का ये कारण सुख पर्याय का विषय अपन ने चला लिया। अभी 11, 12, 13, 14 और 15 गाथा जो है उसका थोड़ा संक्षिप्त में विषय लेके थोड़ा ये 320 गाथा का विषय लेके अपन पूर्णता करेंगे। तो अपनी चर्चा जो सवेरे चली उसमें नियमसार की तीसरी गाथा में कारण सुख पर्याय का विषय आया वो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम करके आया। फिर सातवीं गाथा में कारण परमात्मा कह के नौवीं गाथा में कारण शुद्ध जीव कहा और दसवीं गाथा में उसको चैतन्य अनुविधायी परिणाम कि चैतन्य को अनुविधायी माने अनुसरता हुआ परिणाम माने कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग ऐसा चैतन्य अनुविधायी परिणाम कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग वो अभी अंदर में रह के क्या उसमें हो रहा है कि वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है वो अपना त्रिकाली द्रव्य और त्रिकाली द्रव्य में जो शक्ति रूप अनंत गुण है वो शक्ति रूप अनंत गुण को त्रिकाली ज्ञान स्वभाव उपयोग जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है वो जानने के लिए समर्थ है। माने कि त्रिकाली चैतन्य अनुविधायी परिणाम ज्ञान जो है वो स्वाभाविक ज्ञान है वो ध्रुव ज्ञान है वो त्रिकाल ज्ञान है वो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव जो है वो जानता है और ये शक्ति रूप नायक है वो उसमें जानने में आ रहा है, ये जान रहा है, ये जानने में आ रहा है। ऐसी क्रिया नहीं है अंदर, निष्क्रियपन है, ऐसा एक स्वरूप है अंदर का। वो बात अपनी सवेरे चली थी कि शक्ति रूप स्वभाव है, एक शक्ति रूप है नायक भाव और एक त्रिकाल ज्ञान स्वभावी उपयोग है चैतन्य अनुविधायी परिणाम। वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम जो ज्ञान स्वभाव उपयोग है वो जानता है। वो क्या जानता है कि शक्ति रूप त्रिकाली द्रव्य उसको जानता है। ये ज्ञान स्वभाव उपयोग है, ये त्रिकाली द्रव्य अनंत गुणात्मक है, वो ये नायक भाव को जानने के लिए समर्थ है। स्वभाव माने कि वो अनादि से जान रहा है, वर्तमान में जान रहा है, अनंत काल तक जान रहेगा, ऐसा अंदर में ध्रुव स्वभाव है। वो ध्रुव स्वभाव की चैतन्यता ही ऐसी है कि उसमें जानना और त्रिकाल दर्शन स्वभाव उपयोग है, उसमें देखना। तो जानना और देखना स्वभावभूत अंदर में, कोई क्रिया नहीं है, स्वभावभूत माने कि स्वभाव है, भूत माने कि होना है, होता नहीं है, है होता है वो वर्तमान पर्याय में है, ये तो है। स्वभावभूत जानना और स्वभावभूत देखना इसे अपने शुद्धात्मा को अनंत गुणात्मक त्रिकाली द्रव्य को वो जानना और देखना त्रिकाली ज्ञान दर्शन का स्वभाव में वर्तमान में वर्त रहा है, ऐसा ये दसवीं गाथा का विषय था। तो उसमें से अपन ने फिर सामान्य उपयोग की चर्चा लेके वर्तमान जो प्रकट रूप ज्ञान उपयोग है उसको सामान्य उपयोग बोला जाता है। क्यों सामान्य उपयोग बोला जाता है कि सामान्य में से वो प्रकट हो रहा है, त्रिकाली ज्ञायक में से वो आ रहा है और वो सामान्य उपयोग को कोई बाह्य उपाधि लागू नहीं पड़ती है, इसलिए उसमें भेद नहीं देखना। अगर वो ज्ञान तो प्रति समय मति श्रुत अवधि मन पर ही है तो केवल ज्ञान है, विशेष पांच भेद रूप कोई न कोई भेद रूप होता है, मगर यहाँ स्वभाव का अंश अंदर से आया है तो वो स्वभाव का जो अंश है वो अंश में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा वर्तमान पर्याय। एक त्रिकाल स्वभाव लक्षण, एक वर्तमान उपयोग लक्षण और वर्तमान उपयोग लक्षण में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो जानने में आ जाए तो उसको शुद्ध उपयोग होता है, तो वो शुद्ध उपयोग भी आत्मा का लक्षण है। इसे तीन प्रकार के लक्षण की चर्चा अपन ने की थी। उसके बाद में दसवीं गाथा के बाद में ग्यारहवीं बारहवीं गाथा आती है। ग्यारहवीं बारहवीं गाथा में कारण सुध पर्याय के लिए जो शब्द यूज किया है वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वरूप मन की ज्ञायक भाव के स्वरूप होने वाला और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने कि वर्तमान पर्याय ज्ञायक को जानती है ऐसा नहीं, त्रिकाल जो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष पर है। प्रत्यक्ष माने कि वहां कोई भेद नहीं है, जहां भेद होता है वहां परोक्षता और जो अभेद होता है वहां प्रत्यक्षता लागू पड़ती है। तो अंदर में कोई स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो त्रिकाली स्वभाव रूप है, त्रिकाली स्वभाव भूत है, तो उसमें कोई माने कि भेद लागू नहीं पड़ता। जहां स्वभाव भूत बना है ऐसा है उसमें कोई भेद लागू नहीं पड़ता, स्वभाव रूप नहीं है वो, स्वभाव रूप तो पर्याय में होता है, मगर स्वभाव भूतपना जहां है वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान माने कि अपना स्वरूप है उसके साथ प्रत्यक्ष वो वर्त रहा है ज्ञान, उसको बोला जाता है स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसा भी यहाँ ग्यारहवीं गाथा में आचार्य भगवान ने ये बात कही है कि वो जो ज्ञान है वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान माने कि अपना स्वरूप है उससे वो ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, वो प्रत्यक्ष होता नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। ये चर्चा अपनी मात्र त्रिकाली द्रव्य की चल रही है, परिणाम की कोई चर्चा नहीं है इसमें। परिणाम तो प्रगट रूप है, परिणाम तो उत्पाद रूप है, परिणाम तो क्रियाशील है, सक्रिय परिणाम होता है। जो परिणाम में वेदन आता है उसको वर्तमान परिणाम बोला जाता है और उसको क्रियाशील परिणाम बोला जाता है।
ये अंदर का स्वभाव जो है जो त्रिकालिक रूप परमात्मा है उसमें जो जानना देखना वर्त रहा है वो तो निष्क्रियपने जानना देखना चलता है। वहाँ कोई क्रिया नहीं है इसलिए वहाँ वेदन नहीं होता है। जहाँ क्रिया होती है वहाँ वेदन होता है। अभी ये जो त्रिकाली चैतन्य स्वभाव में जैसे चैतन्य अनुविधायी परिणाम से जानना, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सब जो बात आती है ना, तो पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन में आज आया था, आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि पूज्य गुरुदेव जी ने दृष्टांत दिया कि जैसे ध्रुव है ना, ध्रुव तो ध्रुव प्रवाह वो अंदर में चलता है, ऐसा गुरुदेव ने बोला, आप पढ़ लेना उसमें, ध्रुव प्रवाह वो अंदर में चलता है, मन की अंदर में शुष्कता नहीं है, ध्रुव प्रवाह चालू है, अंदर में जानना देखना वर्त रहा है, ऐसा ध्रुव प्रवाह है। गुरुदेव बोले कि पानी का प्रवाह तो ऐसे चलता है, वो ऐसे दिखाते हैं, पानी का प्रवाह तो ऐसे चलता है और ये ध्रुव प्रवाह तो ऐसे चलता है, ऊर्ध्व ये ध्रुव प्रवाह ऐसे चलता है। वो ध्रुव प्रवाह जो चलता है ना, वही कारण सुख पर्याय है, वो चैतन्य का ध्रुव प्रवाह। और दूसरा शब्द पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है, कहीं भी ये शब्द आए तो आप समझ लेना कि ये चर्चा कारण सुख पर्याय की है। चैतन्य का तेज का नूर का पूर्व, चैतन्य का जो तेज है उसका नूर है, उसका पूर्व अंदर चल रहा है। चैतन्य का तेज का नूर का पूर्व ऐसा एक ध्रुव प्रवाह अंदर चल ही रहा है। उसमें उसको कुछ करना नहीं है कि ये ध्रुव प्रवाह कैसे चलाऊं मैं, कैसे चलेगा, बस उसको उधर देखना है कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा अंदर में कुछ है, ऐसी मेरी वस्तु में कोई मैंने आज तक विचार ही नहीं किया, आज तक सोचा ही नहीं। अभी ये जितनी चीजें देखने में आती है ना, उस पर तो बराबर भरोसा जीव को रहता है, देखने में चीज आती है ना उसके ऊपर एकदम भरोसा आ जाता है, मगर ये देखने में नहीं आता ऐसे, ये तो अरूपी चीज है, अमूर्तिक पदार्थ है, मगर वो है चैतन्यमय, भले अरूपी हो अमूर्तिक हो मगर चैतन्यमय है, यानी कि ज्ञानमय है, इसलिए वो वेदन से पकड़ सकता है। जी ऐसा उसको बाह्य का पदार्थ दिखता है ऐसे नहीं दिखता है, मगर उसको वेदन से पकड़ा जाता है, तो उसको देखने वाली चीज का तो विश्वास आ जाता है कि ये है, क्योंकि क्या है उसको परिचित है, और इसका परिचय उसने नहीं किया कभी, और ज्ञानी पुरुष की दिव्य ध्वनि पर देशना भी आ गई, गुरुदेव जैसे पुरुष की ऐसी देशना मिल गई, फिर भी उसके पीछे पड़ के वो प्रयास नहीं किया कि ये ध्रुव प्रवाह क्या होता है, चैतन्य का तेज का नूर का पूर ऐसी मेरी वस्तु कैसे पड़ी है अंदर में, ऐसे कैसा मेरा स्वभाव है, ये मेरे गुरुदेव जो बता रहे हैं मेरे को कि अंदर का स्वरूप कैसा है मेरा, ऐसा उसने सोचने का विचार किया होगा तो उसके ऊपर उसने त्राटक नहीं किया है, उसके पीछे नहीं पड़ा है, और या तो कभी उसने ऐसा विचार नहीं किया है। ध्रुव का लक्ष्य करना, ध्रुव पर जाना, ये सब विचार तो उसको मालूम है कि पर का लक्ष्य छोड़ना, स्व की तरफ जाना, मगर स्व में क्या भरा है, स्व कैसा है, उसकी चैतन्य की महिमा क्या है, उसमें क्या वर्त रहा है, वो कैसी उसकी परिपूर्णता है, कैसा उसका सामर्थ्य है, कैसा उसका स्वभाव में वो स्वभाव भूतपणे लीन रहता है अनादि से और अनंत काल तक, ऐसा रहने वाला है वो, ऐसा मेरा चैतन्य प्राण कैसा है अंदर में, ऐसा उसको विचार में भी आने लगे ना, तो पूज्य गुरुदेव जी ने इससे बताया कि इसकी ज्ञान की निर्मलता हो जाए, उसकी ज्ञान की निर्मलता, वो विचार में ज्ञान की निर्मलता हो जाए, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये अद्भुत महिमावंत स्वरूप है, और मिथ्यात्व उसका इतना पतला हो जाए, मोह इसका इतना पतला हो जाए कि बस उसके हाथ में गायब भाव आया कि अभी आएगा, ऐसा ही उसको चलने लगे, ऐसी ये बहुत अच्छी सी अच्छी ये सब गाथाएं हैं, इसलिए अपन संक्षिप्त में उसकी चर्चा करके इसको विषय को पूरा करते हैं। ये स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है कि स्वरूप के साथ प्रत्यक्ष जानना उसका चल रहा है, जानना 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 जानना, दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाद में वो तेरहवीं गाथा है, वो तेरहवीं गाथा में जैसे ये सब जो अभी तक विषय आ रहे हैं सब ज्ञान का विषय चला है, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध जीव, अभी जो आया स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान चैतन्य निर्विदाय परिणाम, वो सब ज्ञान का ज्ञान की बात चली। अभी जो तेरहवीं गाथा हम बता रहे हैं वो कारण दृष्टि की बात है, जिससे दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धा है, तो श्रद्धा तो वर्तमान में पर्याय है श्रद्धा की, मगर अंदर में ऐसी एक कारण दृष्टि है, वो कारण दृष्टि निरंतर अपने कारण स्वभाव जो अपना जनायक भाव अपना ध्रुव चैतन्य भाव उस पर ही निरंतर रहती है कारण दृष्टि। वो कारण दृष्टि अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं, उस रूप ही रहती है, माने कि ज्ञान जैसे स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है ऐसे कारण दृष्टि भी स्वरूप प्रत्यक्ष है, वो अपने को देखती रहती है देखती रहती है देखती रहती है, ऐसा स्वाभाविक अंदर में है, स्वाभाविक देखना स्वाभाविक देखना स्वाभाविक श्रद्धा वो अंदर में चालू है, वर्त रहा है वर्त रहा है, वो बाहर से उसको पता चले कि यही मैं हूं तब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसी एक कारण दृष्टि अंदर में है, वो अंदर में विद्यमान है, वो अंदर में निरंतर रहती है, उसका कभी व्यय नहीं होता, वो अनादि अनंत होती है। ये सब कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा है, वो पूरी अनादि अनंत है, जैसे वर्तमान पर्याय में कोई भी भाव चलता हो मगर इसका कभी व्यय नहीं होता, ये ऐसा ऐसा रहता है, निरपेक्ष है ये। समय दर्शन की पर्याय भी दूसरे समय व्यय हो जाए बाद में दूसरी पर्याय आवे, मिथ्या दर्शन की पर्याय व्यय हो जाए बाद में दूसरी पर्याय आवे, अशुभ भाव और शुभ भाव से शुद्ध भाव हो जाए, तो ये परिवर्तित होता है सब वर्तमान में, ये परिणमनशील है, ये परिवर्तित है, आगे जाए तो चारित्र हो गए बाद में केवल ज्ञान हो बाद में सिद्धता हो, ये सब परिवर्तित होता रहता है, ये फिरता है स्वभाव। तो पर्याय क्या है, वर्तमान परिणमन रूप है, फिरता 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 चलता है, और ये क्या है, ये कारण स्वभाव ज्ञान, कारण दृष्टि, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, चैतन्य अनुविदायी परिणाम, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध जीव, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वो ऐसा न ऐसा अपने में अपने से ही रहता है, वो ऐसी एक चीज अंदर में जानने देखने की उसके पास बच गई है, इसलिए उसको वर्तमान में पर्याय में द्रव्य को जानने का पुरुषार्थ नहीं करना है, उसको मेरा स्वभाव ऐसा है ऐसा मानने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अपना स्वभाव में तो जानना चल ही रहा है, तो जानने जाना नहीं पड़ता उसको, और उसकी जो वर्तमान उपयोग रूप पर्याय है उसमें तो जानने में आ ही रहा है, तो अभी उसको स्वीकार करना है कि मेरा स्वरूप अंदर ऐसा है, मेरा स्वभाव अंदर ऐसा है, मेरी चैतन्यता ऐसी परिपूर्ण अंदर पड़ी है, जानना देखना तो जानना देखना तो है ही मेरा मेरे में, मैं द्रव्य को नहीं जानता हूं और पर को जानता हूं और पर्याय को जानता हूं ऐसा हुआ ही नहीं है, अंदर में मेरा स्वभाव ऐसा शुद्ध पड़ा है, एक कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान कारण दृष्टि शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कि अपने पूरे त्रिकाली द्रव्य उसके अनंत गुण और उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय को जानना देखना जानना देखना जानना देखना वर्त ही रहा है, तो वो ऐसा समझ में आ जाता है तो बस उसका स्वीकार करना है और कुछ वो कर भी नहीं सकता है, और तो कुछ वो कर भी नहीं सकता है, मात्र इनका स्वीकार ही कर सकता है, या स्वीकार करे या तो स्वीकार न करे, बस उसके हाथ में इतना ही है, स्वीकार करे या तो वो प्रति समय स्वीकार न करे, स्वीकार करे तो उसकी कार्य की वर्तमान में संपन्नता है, और स्वीकार न करे तो वो तो अनादि से चल ही रहा है, तो अनादि से चल रहा है उसको अभी भूलना है अपने को, वो कब तक चलेगा, वो अभी स्वीकार के पीछे पड़ना है, स्वरूप ढूंढना है अंदर, स्वरूप समझना है, स्वरूप ऐसा है ऐसी मान्यता करना है, ऐसा विश्वास करना है अपने को कि स्वरूप ऐसा ही है, चाहे पर्याय में अभी प्रकट नहीं होता है तो उसको याद मत करो, उसको याद करने से ज्यादा विकल्प होते हैं, और इसको याद करने से विकल्प मंद होके मंदतम होके मंदतर होके विकल्प चले जाते हैं, इसके स्वरूप को समझने का ही सचमुच में पुरुषार्थ करने जैसा है, और कुछ की पर्याय मेरी कहां चली गई, पर्याय में इतने मोड़ा दृष्ट तो चल रहे हैं उसको तो मेरे को अभी ऐसा चल रहा है और ऐसा विनायक भाव है, ये कैसे मेरे हाथ में आएगा? ऐसी सोच नहीं चलाना कि अभी तो हमको मिथ्या दृष्टि है, अभी तो मेरा परिणमन तो बहिर्मति चल रहा है और ऐसी चीज जो है वो तो अरूपी चीज है, वो मेरे ख्याल में ऐसे कैसे आ सकती है? अरे सबके ख्याल में आ रही है, ऐसा स्वीकार करना है खाली। ख्याल में नहीं आ सकती ऐसा नहीं, ख्याल में आ रही है ऐसा स्वीकार करना है कि स्वीकार की बात है मात्र, और कुछ है ही नहीं इसमें। इतना स्वीकार से अनुभूति का जन्म होता है, ऐसी मेरी चीज है, ऐसा मेरा स्वभाव अंदर पड़ा है। तो ये 13वीं गाथा में कारण दृष्टि की बात की है, बाद में 14वीं गाथा जो है उस हाँ। वो दर्शन मो और दर्शनावरणी, केवल दर्शन के लिए दर्शनावरणी का प्रयोग किया जाता है और दर्शन मो तो श्रद्धा की बात है। कारण दृष्टि की बात है, नहीं दर्शन तो अवलोकन अलग चीज है, ये दृष्टि की बात है। वो त्रिकाल ज्ञान दर्शन को आ गया दृष्टि का था, स्वभाव ज्ञान उपयोग और स्वभाव दर्शन उपयोग, और ये कारण दृष्टि माने श्रद्धा की बात है। ये श्रद्धा गुण जो अंदर में पड़ा है उसमें एक कारण दृष्टि वाला स्वभाव है, और कारण दृष्टि वाला स्वभाव है वो कारण दृष्टि अभी वर्त रही है अंदर में, और वर्त रही है ऐसा स्वीकार में श्रद्धा की सम्यकता होती है, ऐसा कहना चाहते हैं। नहीं परोक्ष अनुभूति तो वर्तमान पर्याय में होती है, ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है और अनुभूति नहीं है वहां। अनुभूति तो वेदन के टाइम में ही होती है। देखो अनुभूति परोक्ष हो या प्रत्यक्ष हो वो सब वर्तमान पर्याय में है। ये त्रिकाल पर्याय की बात चल रही है, त्रिकाल स्वभाव की बात चल रही है, ज्ञायक भाव की बात चल रही है। इससे ना तो वर्तमान पर्याय है, ना मोरा द्वेष है, ना समय दर्शन, ना चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ना कर्म है, ना शरीर मन वाणी है, वो कुछ नहीं है उसमें। अकेला परमात्मा है मेरा, वो है बस यहाँ, और वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है ये अपन इस माध्यम से समझ रहे हैं, उसमें परोक्ष अनुभूति कुछ नहीं। वो कारण दृष्टि वाला कारण स्वभाव है, कारण दृष्टि वाला ही कारण स्वभाव है, वो कारण दृष्टि है, वो ऐसा स्वभाव ही है। तो कारण पड़ा माने कि उससे पड़ा है, जब कारण पड़ा उससे ही पड़ा है तो दृष्टि वहां वर्तमान दृष्टि वहां जाएगी तो कारण मिल ही जाएगा उसको, कारण दृष्टि पड़ी है अंदर में, ऐसा बताना चाहते हैं।
इसको अपन ऐसे कहें जैसे ध्यान होता दृष्टि में मैं हूँ।
हाँ, वो जल्द वर्त रही है, वो वर्त ही रही है, वो मैं हूँ ऐसे नहीं वर्त रही है, वो तो स्वाभाविक है। मैं हूं वर्तमान में होता है, किंतु मैं हूं वो अहम आ जाता है, वो अहम वाली बात है, वो पर्याय अहम करती है कि कारण दृष्टि तो वर्त रही है कि मेरा निरंतर श्रद्धान ऐसा ही है, निरंतर वर्तमान में निरंतर त्रिकाल का श्रद्धान अंदर चल ही रहा है, उसको करना नहीं है कुछ, वो अहम बना तो वर्तमान कर देगा। ये आपका भाव बराबर है, मैं समझ गया आपकी बात, मगर वो अहमपना की श्रद्धा वर्त रही है वो स्वाभाविक है, श्रद्धा हो रही है वो क्या है, क्रियाशील है, वो क्रिया होगी, वो वेदन की चर्चा होगी, वो सक्रिय की चर्चा होगी, ये निष्क्रिय की चर्चा है। स्वभाव और शक्ति में ऐसा है कि देखो यहाँ जो स्वभाव और शक्ति की चर्चा आई है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा स्पष्टीकरण किया है। देखो एक तो स्वभाव अपने ज्ञायक भाव को बोला जाता है, पहली बात। शक्ति अपने गुण को बोली जाती है, दूसरी बात। और कारण शुद्ध पर्याय है उसको भी स्वभाव बोला जाता है। तो ये तीनों त्रिकाली द्रव्य में अंदर में है। एक तो त्रिकाली द्रव्य है वो अपना स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञायक भाव, नित्य भाव, एक रूप भाव, अखंड भाव, शाश्वत भाव, वो ज्ञायक भाव है, वो स्वभाव है अपना। बोला जाता है कि स्वभाव की दृष्टि कर, स्वभाव की सन्मुख हो जा, स्वभाव से स्वभाव को देख, तो वो स्वभाव तो त्रिकाली द्रव्य है। अभी दूसरा उसका अनंत गुण है, तो अनंत गुण है वो तो स्वभाव के अंदर ही अनंत गुणात्मक पूरा स्वभाव है, अनंत गुणात्मक, अनंत गुणमय, अनंत गुण वाला भी नहीं, सफेद नहीं है, अनंत गुणात्मक और अनंत गुणमय स्वभाव है। तो वो अनंत गुण आ गया उसमें। अभी यहाँ जो कारण सुख पर्याय की चर्चा चल रही है, उसमें जो कारण सुख पर्याय है उसको भी स्वभाव बोला है। त्रिकाल ज्ञान वो भी स्वभाव, त्रिकाल दर्शन वो भी स्वभाव, त्रिकाल दृष्टि वो भी स्वभाव, उसको स्वभाव बोला है। तो वो जो स्वभाव है, वो स्वभाव क्या कर रहा है, वो जान रहा है। और जान किसको रहा है कि ये स्वभाव भूत अनंत गुणात्मक जो शक्तिवान है उसको वो जान रहा है, और वो ये जानने में आ रहा है। बस ऐसा स्वभाव और स्वभाववान का सुमेल है, वो एक रूप है। मगर ये क्यों कहा जाता है कि जानना देखना त्रिकाल चल रहा है, क्योंकि वर्तमान पर्याय में वो अंदर से आता है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। इसलिए ये अंदर का बात है, अंदर में ऐसा होता है तो ही बार आता है, वो उसका प्रमाण है। उधर उधर से वो बात सिद्ध होती है कि अंदर में भी ऐसा है। कुछ गुरुदेव बोलते हैं ना कि प्राप्त की प्राप्ति होती है, कुएं में हो तो अवेले में आता है, अंदर में हो वो बाहर आता है। तो वो अंदर में भी ऐसा कुछ है, ऐसा जानना देखना जानना देखना जानना देखना वर्त रहा है, इसलिए वो बाहर आता है। इसलिए स्वभाव शक्ति और कारण सुध कारण सुध पर्याय वो भी स्वभाव बोला जाता है। स्वीकार श्रद्धा में आता है, स्वीकार श्रद्धा में आता है, विश्वास आए उसको, स्वीकार आ जाए ऐसा ही हूं मैं, मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मेरी परिपूर्णता ऐसी है, मेरी संपूर्णता इधर ही है, मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को जाननहार अंदर में है वो वर्त रहा है जानने के लिए, और ऐसा मेरे को स्वीकार करना है। मेरे को उसको जानने जाना है, मेरे को पर्याय को फिराना है, मेरे को पर्याय को स्व की तरफ ले जाना है, पर से हटाना है, ये सब विकल्पात्मक परिणाम है। वो रात चल रहा है उधर, कुछ भी ऐसा परिणाम चले ना तो वो जितना भेद पड़ता है उतना रात की उत्पत्ति होती है, जितना भेद उतना विकल्प, जितना अभेद उतना निर्विकल्प। हाँ, ये अज्ञानी की बात कर रही है। अज्ञानी जीव है, उसका ऐसा अंदर में स्वरूप है, और वो अज्ञानी ऐसा स्वरूप का स्वीकार करके ज्ञानी हो जाता है। ये अज्ञानी की चर्चा कर रही है। ज्ञानी को तो अहम हो जाता है, तो उसको पता ही चल जाता है कि ऐसा तो अंदर में था ही, ये इतना काल चला कैसे गया मेरा। उसको तो ऐसा आश्चर्य होता है कि मेरा स्वरूप ऐसा ही था, अनादि काल बीत गया है, अनादि से मैं ऐसा रहता हूँ, अनादि में मेरे में जानना देखना चल रहा है, अनादि से मेरा स्वभाव में मेरा स्वभाववान वर्त रहा है, मेरा शक्तिवान मेरा स्वभाव में निरंतर वर्त रहा है, निरंतर जान रहा है, निरंतर देख रहा है, ऐसा मुझे आज पता चला। तो इतनी देर कैसे हो गई, ये काल गया क्यों इतना। फिर उसको भी ऐसा लगता है कि इतना काल जाने में कितने कितने मैंने विकल्प कर दिए। वो तो पूर्व पर्याय को भी ज्ञान होता है, उसको पता चल जाता है उसको है? तो काम समय का है, एक समय में ही होता है काम, इसमें कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है। होता क्या है, स्वभाव जहां बस रहा है, स्वभाव जहां विद्यमान है, स्वरूप जहां पड़ा है, वहां से उसकी पहचान वो नहीं करता है, और वो दूसरे माध्यम से उसकी पहचान करने का पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। जहां उसका केंद्र बिंदु है, वो तो केंद्र बिंदु में जाके उसको देखता भी जागता नहीं है, इसलिए क्या होता है उसको बहुत पुरुषार्थ लगता है। जहां स्वभाव पड़ा है वहीं पे वो पुरुषार्थ लगा रहे, उधर ही देखने का प्रयास करे, उधर से ही उसको समझने का प्रयास करे, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों नहीं आता है, आते हैं आ ही जाएगा तुरंत ख्याल में। ऐसे अपने को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, मगर स्वरूप ख्याल में आता है तब ऐसा लगता है कि बहुत सरल है। कलष्टिकाकार ने लिखा है कि ये अनुभूति कठिन तो जरूर है, मगर असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, कठिन जरूर है मगर असत्य नहीं है। स्वरूप ग्राही ज्ञान वाला जीव उसको पता चल जाता है कि पानी है, वो पानी उसकी शीतलता कभी छोड़ता ही नहीं, कितना भी उष्ण हो जाए, उसकी पर्याय में उष्णता कितनी भी आ जाए मगर उसकी शीतलता उसी समय भी कायम रहती है, शीतलता है उसमें, उसको उंगली डालने से पता नहीं चलता है, तो स्वरूप ग्राही ज्ञानी उसको जानता है कि ये पानी शीतल ही है, जब उष्ण है तब उष्णता की हयाती में वो ऐसा मानता है और ऐसा जानता है कि पानी शीतल ही है, और वही उष्णता वाला पानी अग्नि पर फेंके तो अग्नि चली जाती है, इसलिए उसका स्वभाव शीतलता है, वो स्वभाव छोड़ा नहीं है, द्रव्य ने छोड़ा नहीं है, उसका गुण ने छोड़ा नहीं है, उसकी त्रिकारी कारण सुख पर्याय ने छोड़ा नहीं है, उसका वर्तमान उपयोग ने ज्ञान स्वभाव ने छोड़ा है, इसे उसका शीतल स्वभाव छूटा ही नहीं है। अग्नि के निमित्त से कितनी भी उसको उष्णता हो गई वो, मगर वो तो अग्नि का स्वभाव है, पानी का स्वभाव तो शीतल ही है, क्योंकि पर्याय में उष्ण हुआ है फिर भी वो स्वभाव कैसे हो जाएगा, तो कि वो उष्णता का धर्म ही अग्नि का है, शीतलता का धर्म ही पानी का है, तो धर्म धर्मी को ही प्रकाशित करता है, लक्षण को ही लक्षण लक्ष्य को ही प्रकाशित करता है, अलक्ष को प्रकाशित नहीं करता, इसलिए ये समझ का काम है, इसे पुरुषार्थ समझ का होता है, निमित निमित क्यों हुआ, क्षणिक उपादान क्यों हुआ, त्रिकाली कैसा है, उसका परिणमन कैसे चल रहा है, उसका स्वभाव कैसे उसमें व्यक्त हो रहा है, व्यक्त स्वभाव में अव्यक्त परमात्मा कैसे जानने में आ रहा है, अंदर में ध्रुव कैसे जानने में आ रहा है, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास अंदर में कैसे चल रहा है, ध्रुव में ध्रुव का जानना कैसे चल रहा है, और वो व्यक्त रूप पर्याय में कैसे अहम करके प्रगट हो जाता है, ये सब समझ अच्छी तरह से हो गए ना, और केंद्र बिंदु मात्र द्रव्य और उसका एक समय का वर्तमान प्रकट होता हुआ उपयोग, यहां पे ही मात्र से मात्र कार्य होता है, दो के विचार ही करने लायक है और ज्यादा सोचना ही नहीं बहुत, एक मेरे पास गुणायक भाव है और एक मेरे पास प्रकट होता हुआ ज्ञान है, बस वो ज्ञान में गुणायक जानने में आ रहा है और ज्ञान में गुणायक जानने में रहा है, ऐसा अंदर त्रिका ज्ञान है उसमें भी वो गुणायक वर्त रहा है, इतना ही काम है, इसमें जितना भेद विकल्प पड़ता है, जितना भेद पड़ता है इतना विकल्प है बस, अभी जो अभेद हो गया तो भी विकल्प हो जाता है, यहां न यहां इतनी ही इसकी मर्यादा है, इससे बाहर कुछ है नहीं इसका, क्योंकि वो जाननहार है, अनादि से, अनादि से जानन देखनहार है, निगोज में था तो भी जानन देखनहार था, मनुष्य गति में आया तो भी जानन देखनहार है, यहां से स्वर्ग में जाएगा तो भी जानन देखना है, जहां भी जाएगा जानना देखना जानना देखना जानना देखना, वो स्वभाव उसके साथ ही रहता है, वो छूटता ही नहीं, मोराज में स्थिरता रहता है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है उसकी, उसके साथ रहती है वही वस्तु उसकी है, ज्ञान और न्याय छूटता ही नहीं कभी, उसके साथ ही रहता है, तो वही उसकी वस्तु है मात्र, हाँ सर है उन्नति क्रिया बराबर है, 270 में भी आया है, उसकी उतनी ही क्रिया है, सत है तो उन्नति क्रिया, उसके अलावा कोई उसकी क्रिया ही नहीं है, ज्ञान क्रिया ही है बस, बाकी की सब चीजें फिरती रहती है, ज्ञान क्रिया ऐसी रहती रहती है, जानना 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 जानना, और वो ज्ञान क्रिया में ज्ञायक अवस्थित है प्रति समय, कोई भी उसकी गति में वो जाए वहां वो चलता ही रहता है, वो फिरता ही नहीं, बाकी का सब फिरता रहता है, वो अनादि अनंत रहता है, तो वो अनादि अनंत रहता है वही तो मैं हूं, वही तो मेरा स्वभाव है, वही तो मेरी अस्थि है, इस तरीके से ये प्रकरण को विचार में लेके समझ करना चाहिए, तो फिर सरल है बहुत, द्रव्यानुयोग इतना सरल है, इतना सरल है कि इसमें क्या है कि घर भी उसके पास है अपना और घर में जाने का मार्ग भी उसके पास है और घर में जाना भी उसको है, वो भी वहां ही है। दूसरे अनुयोग में तो उसको किसी की अपेक्षा रखनी पड़ती है। यहां तो क्या है कि घर अपना है, अपने पास है, है? उसके अंदर जाने वाला ज्ञान है, वो भी अपने पास प्रगट है, पर कभी वो जाए इतनी देर है और अपने घर में जाने के लिए किसी को पूछना तो नहीं पड़ता कि मैं मेरे घर में जाऊं कि अभी थोड़ी देर बाद जाऊं, है? अपना घर है और अपना घर में तो रहता है, अपना घर में चीज अपनी सब, अपना विनायक भाव, अपना आनंद गुण, अपनी अनंत कारण सुख पर्याय, अपना सुख, सुख चाहिए सुख अंदर में है, पुरुषार्थ चाहिए पुरुषार्थ गुण अंदर में है, प्रभुत्व चाहिए तेरे को तो प्रभुत्व गुण अंदर में है, तेरे को सर्व को जानना है केवल ज्ञानी की तरह तो सर्वतत्व गुण तेरे में है, तेरे को सर्व को देखना है सर्वतत्व गुण तेरे में है, तेरे में कमी ही नहीं है कुछ। अभी वर्तमान पर्याय प्रकट हुई न कि नहीं, ऐसा क्यों तू देखता है? अंदर में पड़ा है वहां से तो वर्तमान पर्याय आने वाली है, तो अंदर पड़ा है उसको देख ले तो बाहर आ ही जाएगा वो। मुझे गुरुदेव जी बोलते हैं ना कि अनंत 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 केवल ज्ञान की पर्याय एक ज्ञान गुण में पड़ी है। अब यो कितनी भी केवल ज्ञान की पर्याय निकले तो भी ज्ञान गुण में कुछ बढ़कर होती नहीं, ऐसा रहता रहता है टंको किरण। ऐसा स्वभाव का महिमा अंदर से आना चाहिए कि ओहो मेरी वस्तु में कुछ नहीं हुआ है, मेरा विनायक भाव में कुछ हुआ ही नहीं है, वैसा रहता परिपूर्ण जब मैं देखू तो बस वो दर्शन देने के लिए तैयार है, मगर मैं दर्शन लेता नहीं। अभी बात में मैं दर्शन ले भी रहा हूं मगर मैं मानता नहीं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आएगा तो स्वीकार नहीं आता उसको, स्वीकार करे उतनी देर है, उतने में तो कार्य हो जाता है। कारण शुद्ध समय का माने अपना त्रिकालिक नायक भाव एक है। इसमें क्या है कि जहां कारण की चर्चा करनी हो वहां उसके आगे समयसार हो कि शुद्ध समयसार हो उसके आगे कारण लगा देते हैं। अभी देखो नियम सार में जो आया कि कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, तो वहां क्या है कि इसमें प्रश्न उठाया है कि भाई ये कारण शुद्ध पर्याय की बात नियम सार में ही क्यों आई, दूसरे कोई ग्रंथ में नहीं है। तो गुरुदेव ने जवाब दिया है कि भाई यहां मोक्ष मार्ग और मोक्ष का कार्य प्रकट करने के लिए नियम सार की रचना हुई है, इसलिए कार्य की शुद्धि की प्रगटता के लिए उसका कारण यहां बताया है, इसलिए यहां कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आई है, ऐसा नहीं नियम सार नहीं। देखो ये श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्मदिन है, श्रीमद् राजचंद्र जी ने उसकी अभ्यंतर हाथ नोंद है उसमें ये बात छेड़ी है, गुरुदेव ने उसका रेफरेंस भी दिया है कि कोई न कोई ऐसा स्वाकार परिणामी पदार्थ जीव के पास होना चाहिए, परिवर्तित के समय ऐसा कोई स्वाकार परिणामी पदार्थ अंदर में ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के हाथ में नियम सार ग्रंथ भी नहीं आया था, 20 शास्त्र उसमें लिखे हैं, सम्यक दर्शन में निमित हुए, उसमें नियम सार नहीं है, उसको नियम सार नहीं मिला था। तो ये कारण शुद्ध पर्याय की बात नियम सार पढ़े उसको ही आवे और बाकी को नहीं आवे ऐसा नहीं है, ये तो स्वरूप की बात है, तो ये तो अंदर से निकलती है। इसमें लिखते हैं पद्म प्रबंधारी देव कि ये तो आचार्यों और गणधरों की परंपरा से चली आई हुई बात है, ये कोई मेरी बात नहीं है, ये तो परंपरा से चली आती हुई बातें है, ये तो अपने पास जिसने शास्त्र है उसमें अभी इसी में है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि खाली इसमें नियम सर में आया है, मगर ये स्वभाव है अपना, ये अपना स्वरूप है अंदर का, और ये अभी 13वीं और 14वीं गाथा में वो भेद रूप पर्याय की चर्चा है, परिसमनता भेदम गच्छति इति पर्याय, कि जो सर्व प्रकार भेद को प्राप्त हो उसको पर्याय कहते हैं। और 15वीं गाथा जो है उसकी थोड़ी एक दो बात करके अपन समाप्त करते हैं। 15वीं गाथा में मूल बात है ये, मगर उसका उसकी शुरुआत है वो 3री गाथा से ही होती है। 15वीं गाथा में तो वो शब्द आया है कारण शुद्ध पर्याय पूजित पंचम भाव परिणत, ऐसा शब्द 15वीं गाथा में आया है। इसलिए ऐसा लगता है कि खाली 15वीं गाथा में ही ये है, ऐसा नहीं है। 3री गाथा से ये अपन ने जो सब लिया ना, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कारण परमात्मा कारण शुद्ध जीव चैतन्य अनुविदायी परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान कारण दृष्टि, ये सब कारण शुद्ध पर्याय का नाम है। और ये 15वीं गाथा में वो मूल दिया है कि यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला और शुद्ध ऐसा सहज ज्ञान दर्शन चारित्र परम वितराग सुखात्मक शुद्ध अंत तत्व स्वरूप जो स्वभाव का स्वरूप, उसके साथ जो पूजित पंचम भाव परिणति, पूजित पंचम भाव परिणति उसकी साथ तन्मय पणे रहती हुई जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति वो ही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा उसका अर्थ है। ऐसा इसलिए 15वीं गाथा में इसका नामाधिकरण किया है पद्म प्रबंधाचार्य ने, उसको कारण शुद्ध पर्याय ऐसा नाम दिया और पूजित पंचम भाव की परिणति ऐसा इसमें ये बात करके, ये 15वीं गाथा में भी बहुत विस्तार से मुझे गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत सी बातें कही है, वो आप सब लोग इतनी चर्चा तो अपनी इसमें हुई है आप सब लोग उसको देख लेना, इसमें थोड़ी बात है वो मैं पढ़ लेता हूँ आपको। देखो यहाँ कुछ गुरुदेव श्री ने बताया है, वो एक पैराग्राफ पढ़ के अपन पूरा करते हैं। कारण पर्याय तो सदा शुद्ध है और कार्य पर्याय में तो शुद्ध और अशुद्ध ऐसा दो भेद पड़ते हैं। कार्य की जैसी कारण शुद्ध और अशुद्ध ऐसा दो प्रकार का नहीं, कार्य पर्याय में शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकार है, ऐसे कारण शुद्ध पर्याय में ऐसे कोई दो प्रकार नहीं है। और अशुद्धता का कारणपना भी कारण शुद्ध पर्याय में ही है, अशुद्धता जो उसकी पर्याय में प्रकट होती है उसका कोई कारणपना कारण शुद्ध पर्याय में नहीं पड़ा है, वहां तो शुद्धता प्रकट होने का ही कारणपना पड़ा है, इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय बोला जाता है। शुद्धता प्रकट होने का ही कारणपना उसमें पड़ा है, अशुद्धता तो स्व के लक्ष्य से थोड़ी आती है, शुद्धता तो पर के लक्ष्य से आती है। तो प्रकट पर्याय में अशुद्धि हो तब भी कारण शुद्ध पर्याय में अशुद्धता नहीं होती, प्रकट पर्याय में अशुद्धि कितनी भी हो कारण पर्याय तो परम शुद्ध रहती है, त्रिकाल शुद्ध रहती है, ऐसी नैसी शुद्ध रहती है। कारण शुद्ध पर्याय तो शुद्धता का ही कारण है, उसमें पर्याय शब्द आने से ऐसा नहीं समझना कि पर्याय दृष्टि का विषय है, वो पर्याय द्रव्य के साथ सदा तन्मय रूपे वर्ती थकी द्रव्य दृष्टि के विषय में समा जाती है। पर्याय द्रव्य के साथ सदा तन्मय रूप से वर्ती हुई, उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक रूप है त्रिकाली द्रव्य के साथ, तन्मय रूप से वर्ती हुई द्रव्य दृष्टि के विषय में समा जाती है। वो त्रिकाली संपूर्ण द्रव्य का एक वर्तमान भेद होने से, संपूर्ण त्रिकाली द्रव्य का वर्तमान भेद माने कि ध्रुव विशेष, ध्रुव सामान्य का ध्रुव विशेष, ध्रुव सामान्य का निरंतर वर्तमान, इसीलिए उसको भेद करके समझाया जाता है। भेद अंदर में नहीं है, भेद करके समझाया जाता है, माने कि अंदर में ऐसा भेद करके समझाने का व्यवहार है। एक वर्तमान भेद होने से उसके लिए पर्याय शब्द का प्रयोग किया है और वर्तमान कार्य मोक्ष मार्ग करने के लिए उसको वर्तमान कारण बताया है, वर्तमान कार्य में मोक्ष मार्ग प्रगट करने के लिए उसको वर्तमान कारण बताया है। पर्याय वर्तमान है, उसकी शुद्धता प्रगट हो गए तो उसके लिए वर्तमान में कोई कारण चाहिए, तो वर्तमान पर्याय की शुद्धता के लिए वर्तमान कारण में कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा कहना चाहते हैं। यह कारण ऊपर जिसकी दृष्टि का जोर है, ये कारण ऊपर जिसकी दृष्टि का जोर है उसको सम्यक दर्शन आदि कार्य होता है। सर्व पदार्थों का ज्ञाता और सर्वोत्तम महिमा वाला ये चैतन्य मूर्ति आत्मा ही है, उसकी अंदर वर्तमान में क्या क्या वर्त रहा है, क्या बोलते हैं, सर्व पदार्थों का ज्ञाता और सर्वोत्तम महिमा वाला, ये चैतन्य मूर्ति आत्मा ही है, उसके अंदर चैतन्य मूर्ति आत्मा के अंदर वर्तमान में क्या क्या वर्त रहा है उसकी ये बात है। अंदर में क्या क्या वर्त रहा है, जानना वर्त रहा है, देखना वर्त रहा है, स्वरूप चेतना है, चैतन्य निर्दयी परिणाम है, कारण दृष्टि है, सुधना चेतना परिणाम है, कारण परमात्मा है, कारण कुछ जीव है, वो वर्त रहा है उसकी ये बात है। जल्दी समझ में न आवे तो भी उसको ऐसा लफ पूर्वक समझना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव का सामर्थ्य अचिंत्य महिमा का गुण गान गा रहे हैं, ये मेरा स्वभाव का सामर्थ्य अचिंत्य महिमा का गुण गान गा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे तो भी मेरे स्वभाव का सामर्थ्य का अचिंत्य का महिमा का गुण गान गा रहे हैं, ऐसा उसमें विचार करना चाहिए। स्वभाव का बहुमान का संस्कार भी, स्वभाव का बहुमान का संस्कार भी मोह को अत्यंत मंद कर देता है। स्वभाव के बहुमान का जो संस्कार पड़ता है वो मोह को अत्यंत मंद कर देता है। और एक जगह गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि ये बात अगर उसको समझ में भी नहीं आवे मगर उसको ऐसा लगे कि ये मेरी बात है, मेरे स्वरूप की बात है, ये महिमावन पदार्थ की बात है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अंदर में विचार करने लगे तो उसको ज्ञान की निर्मलता हो जाएगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव जी ने बताया। ये ऐसी कोई अपूर्व बात है कारण सुध पर्याय की। आप सब लोग ये कारण सुध पर्याय और ये 320 गाथा तो बहुत अच्छी है। ऐसी देखो अपन गुरुदेव का प्रवचन में सब गाथाएं तो सुनते ही है, अपने को पूरा शास्त्र की गाथाएं भी सुनते हैं, मगर कभी 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 ऐसी कोई मुख्य विषय वाली गाथा भी अपने स्वाध्याय में अपने को लेनी चाहिए, जिससे अपने को अपना दृष्टि का बल मिले, अपना द्रव्य की दृष्टि होने में अपनी एक सामर्थ्यता अंदर से प्रकट होने का भाव प्रकट हो जाए और ऐसी कोई योग्यता पक जाए, तो पुरुषार्थ करके ऐसी योग्यता कोई पकने वाली हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कोई भी जीव को कोई भी काल में हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको कोई बात मालूम नहीं है इसलिए उनको अनुभूति नहीं हो सकती है। मूल चीज जिसके ख्याल में आ जाती है उसको अनुभूति जरूर हो सकती है। और अनुभव की पीछे की दौड़ नहीं लगाना है अपने को, स्वरूप समझे उसको अनुभूति का तो ढेर लग जाता है और उसके सामने भी वो देखता नहीं है, क्योंकि इसको देखना छोड़ता ही नहीं है, नहीं तो वो ढेर भी चला जाता है उसको देखता है। इसलिए अपने स्वभाव की महिमा कैसे आवे, अपना स्वभाव का बहुमान कैसे आवे, स्वभाव की रुचि कैसे बढ़े, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो मात्र ध्यानन देखन हार है, बस उतना अपने को मूल रूप से समझना है। ऐसी अपने स्वभाव का बहुमान, स्वभाव का अंदर से महिमा ऐसा आके सब भव्य मोक्षार्थी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।